मेरे अजीज साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 14 फरवरी 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं प्रेम सिंह, आप बाड़मेर राजस्थान से हैं, और अनूप पाठक, आप भदोही उत्तर प्रदेश से हैं। तो प्रेम और अनूप, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 19 फरवरी धीरे धीरे करीब आ रही है और अब तो मुझे लगता है कि आप सब में बहुत से लोगों को उसके आने के पैरों की आहट भी सुनाई देने लगी होगी। एटलीस्ट मुझे तो सुनाई देने लगी है। मित्रों, तो मैं आप सबसे मुखातिब होकर के जो स्टूडेंट अभी के बैच में आ रहे हैं, एक दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि हमारे फिफ्थ बैच के एक स्टूडेंट रहे हैं सत्येंद्र कुमार, उन्होंने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है। मैसेज लगभग उसी तरह के हैं मित्रों, जिस तरह की बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन उसमें उन्होंने एक नई बात लिखी है आप लोगों के लिए। ये उनकी सद्भावना है एकेडमी के प्रति भी और आप लोगों के प्रति भी। उन्होंने बताया है कि देखिए, आप सब अपने पास दवाइयां रख लीजिएगा और खासकर सर्दी जुकाम वाली दवाई तो जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस लगती हैं वो एसी रूम में लगती हैं, एसी वहां होता है, तो आदत न होने पर हो सकता है कि आप एक दो दिन थोड़ा सा अपने को सर्दी जुकाम का विक्टिम पाए, उसका शिकार हो जाए। तो बहुत अच्छा होगा कि इस तरह की थोड़ी सी मेडिसिन रख लीजिए तो आप उस दिक्कत से बच जाएंगे, ताकि आपका एक भी मिनट बेकार न जाए। तो मित्रों, आप सबके लिए ये अर्ज है, कह लीजिए सलाह है, कि आप लोग अगर इस तरह के मेडिसिन रख लेंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में बैठ सकेंगे, भले ही उसकी जरूरत न पड़े, कोई बात नहीं। मित्रों, दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपकी रियल की जो पढ़ाई है, ट्रेनिंग है, जो भी इसे आप नाम देना चाहें, वो तभी शुरू नहीं होगी जब आप यहां क्लास में आ जाएंगे, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैं इससे पहले आपसे कह चुका हूं, उसी के अगले चरण के रूप में मैं आप लोगों को फिर से एक बात कहना चाहूंगा फ्रेंड्स की। अब आप लोग अपनी तैयारी में लगभग लग गए होंगे, नहीं तो एक दो दिन के बाद लग जाएंगे। प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को माने कि आप अपनी तैयारी खुद कीजिए, दूसरे को मत सौंप दीजिए कि अपनी मां को सौंप दिया, अपनी बहन को सौंप दिया, घर में और किसी को सौंप दिया कि वो आपकी अटैची ठीक कर दे, आपके लिए सामान निकाल दे। नो दोस्तों, कि आप को खुद अपनी तैयारी करना है। याद रखिए, आपको स्वावलंबी बनना है, स्व पर अवलंबित रहना है, परावलंबी नहीं बनना है। पराधीनता से बड़ा दुख तो कुछ होता ही नहीं। हम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। जो व्यक्ति पराधीन है, दूसरे के अधीन है, उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो आप दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा? यहां आकर के आप कहेंगे कि मेरा ये नहीं रखा, मैंने ये कहा था रखने के लिए, वो नहीं रखा। आप बेवजह चिड़चिड़ाएंगे, बेहतर है कि आप खुद कीजिए, स्वावलंबी बनिए और अपनी पूरी तैयारी खुद कीजिए। जो भी चीजें आपको चाहिए, और ज्यादा अच्छा होगा कि आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, यानी कि आप बिस्तर बांध लीजिए, अपनी अटैची लगा लीजिए, नॉट एट ऑल। आप अपनी एक कोई जगह निश्चित कर लीजिए और जो जो चीजें आप लाना चाह रहे हैं वो चीजें वहां इकट्ठे करते जाइए। अभी तो आप सिर्फ इकट्ठा कीजिए, और जब आने का वक्त हो उससे थोड़ी देर पहले वो सारी चीजें आप अपने बैग में, अटैची में, जो चीजें लाना चाह रहे हैं उसमें लगा लीजिए, ले आइए। लेकिन उन्हें रखना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हमें सामान्य सी चीज लगती है, ठीक है याद रहेगा, रख लेंगे, लेकिन उस समय आप भूल सकते हैं, भूल जाएंगे, और हो सकता है कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भूल जाए जो आपके यहां के 15 दिन के सुकून में खलल पैदा करे। तो आप ये सब करें मित्रों, और इस आदत को फिर जिंदगी भर बनाए रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर वालों की मदद लें ही ना, लें, लेकिन ऐसी चीजें तो खुद करें जो आपकी अपनी ही है और जिन्हें आप कर सकते हैं, और सच बात यह कि जिन्हें खुद ही करना चाहिए। जैसे मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि अगर मुझे पानी प्यास लगी है, पानी पीना है, तो मैं उसके लिए मांगता क्यों हूं कि मुझे पानी दे दिया जाए? क्या मैं खुद जाकर के पानी नहीं ले सकता? और जब मैं खुद के लिए पानी लेने जा रहा हूं तो वहां अगर मेरी पत्नी बैठी है, मेरा भाई बैठा है या बेटा बैठा है या बहू ही बैठी है, तो मैं उससे भी तो पूछ सकता हूं कि बेटे तुम्हारा तुमको भी पानी पीना है क्या, तुम्हारे लिए लाऊं? देखिए पूरा का पूरा वातावरण बदल जाएगा और मेरे इतना कह देने मात्र से वहां वहां जो है पॉजिटिव एनर्जी जैसे कि एकदम ब्रस्ट हो जाएगी, दौड़ पड़ेगी सब सबके अंदर। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनके असर बहुत बड़े हैं। तो मित्रों, और ये जो इसका स्रोत है वो स्वावलंबन है। स्वावलंबन, जब हम खुद अपना काम करने लगते हैं तो याद रखिए कि हमारे ईगो घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। और मित्रों ऐसा कीजिए, यह भी आपके ट्रेनिंग का ही हिस्सा है जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, जो आपकी चेतना में बदलाव लाएगा। तो दोस्तों इस संबोधन के बाद अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों कल के IR न्यूज में 3-4 जो खबरें हैं, पहले मैं उनकी आपको चर्चा कर दूं, फिर मैं उसमें से एक टॉपिक पर विस्तार से बात करूंगा। एक खबर आपने पढ़ी थी कि जो तमिलनाडु में जो अभी राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो वहां के जो महाधिवक्ता थे, जो एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनसे सलाह मांगी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल जो हमारे मुकुल रोहतकी जी हैं, उन्होंने सलाह दी कि करना ये चाहिए कि विधानसभा का विशेष सत्र गवर्नर साहब बुलाएं और उसमें जो दो ग्रुप बन गए हैं IDMK में एक शशिकला जी के साथ और दूसरे हैं पनीर सेल्वम जी के साथ, और वो फिर फ्लोर ऑफ हाउस मतलब हाउस के अंदर बाहर नहीं, वो उनको अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका दें, और जो बहुमत सिद्ध कर दे सीधी सी बात है कि उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दें। इसकी चर्चा आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले ही दिन की थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है और ऑलमोस्ट यूं कह लीजिए कि अब स्थापित एक नियम भी बन गया है। तो ये उन्होंने सलाह दी है। आप देख रहे हैं कि कल तो पनीर न्यूज में ही आपने सुना कि पनीर सेल्वम जी सचिवालय भी गए और वहां उन्होंने फाइल वगैरह भी देखी, तो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो वो वैधानिक रूप से हैं। तो मित्रों ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन को लेकर के मैं थोड़ा सा महान्यायवादी महाधिवक्ता इन सब के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये इस जानना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि न्यूज में भी अक्सर इनकी चर्चा होती है, अखबारों में भी जब भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो आपको महान्यायवादी शब्द जानने को मिलता है। तो थोड़ी सी स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए और प्री के दृष्टि से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसको लेकर के दिमाग में मैंने देखा है कि स्टूडेंट को जो भ्रम सा रहता है या डाउट भी नहीं कह लीजिए, एक धुंधलापन सा रहता है, वो शायद मेरी इस बात से क्लियर हो जाए। हम लोग इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। मैं पहले कुछ और दूसरी घटनाओं की चर्चा कर दूं, अदरवाइज होता क्या है बाद में वक्त नहीं बच पाता तो चीजें मुश्किल में पड़ जाती हैं। दूसरी खबर आपने सुनी दोस्तों की, दो दैनिक जागरण अखबार है जो यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने चुनाव पूर्व एक सर्वेक्षण एग्जिट पोल खासकर अभी जो हुआ है उसके बारे में कुछ छाप दिया। उसको लेकर के चुनाव आयोग ने ये कहा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। यानी FIR दर्ज करने के बाद मतलब यह है कि एक अपराधी के रूप में आप उनसे फिर पूछताछ, और ये एक प्रक्रिया है। इसमें आपने न्यूज में भी सुना, मैं स्पेशली आपका जो मतलब आपको अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, रेखांकित करना चाह रहा हूं कि जो आचार संहिता है, आचार संहिता के केंद्र में जो बेस में जो बात है वो ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए, पहला जो हमारे संविधान के विरुद्ध हो, और दूसरा जो मतदाताओं को लुभाने वाला, ये कह लीजिए कि मतदाताओं पर एक प्रभाव डालने वाला हो, गलत तरीके से प्रभाव डालने वाला हो। अब अगर चुनाव के सर्वेक्षण आप छाप देते, इससे पहले खूब आते थे लेकिन बाद में ये प्रतिबंध लगाया गया कि अगर आप छापते हैं तो होता क्या है कि जो मतदाता है, जैसे उसको लग रहा है कि नहीं अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो सामान्यतया होता क्या है, जो सामान्य मतदाता होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से बहुत घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़े होते, तो लगता है कि उनको कि यार ये इनकी सरकार तो बनी रही है तो इन्हीं को वोट दे दो, अपना वोट क्यों बेकार जाने दे। तो इस तरीके से जिसके पक्ष में सर्वेक्षण दिखाते हैं, सच पूछिए तो उसके पक्ष में मतदाता का दिमाग थोड़ा सा झुक जाता है। इसको रोकने के लिए ये कार्यवाही की गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आजकल सिविल सर्विस में इस तरह की एक घटना को उठा करके और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 200 शब्दों में उनको उत्तर चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया। दोस्तों एक छोटी सी खबर थी जो खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति को लेकर के कि 3 साल में सबसे कम वृद्धि दर रही है 3% के आसपास। तो एक अच्छी बात है कि महंगाई पर नियंत्रण है सरकार का और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है खासकर डेवलपिंग कंट्री में कि अगर सरकार महंगाई पर नियंत्रण रख सकी है तो। उसमें आपने ये भी सुना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इस तरह के प्री में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपको मालूम होना चाहिए, न्यूज में था। इसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी ने जो एक बात कही उद्घाटन करते समय दोस्तों, ज्ञान आधारित समाज। अब हमको अपने समाज को ज्ञान आधारित समाज बनाना है। तो ये ज्ञान आधारित समाज क्या है? क्या साक्षर समाज ज्ञान आधारित समाज है या साक्षर समाज होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड समाज होना चाहिए या सर्विस सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देना है या ये सारी चीजों को मिलाकर के ही ज्ञान आधारित समाज बनता है? इस पर भी आपको चाहिए कि थोड़ा सा विचार करें, एक छोटा सा टुकड़ा तैयार कर लें कि ज्ञान आधारित समाज कहने का क्या मतलब है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त जो दो तीन जो छोटी छोटी और खबरें हैं जो रेडियो की नहीं है, अखबारों से हैं। एक तो मुझे नहीं मालूम कि राष्ट्रीय अखबारों में यह बात कितनी आई होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक व्यापम का एक मामला हुआ था व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, जिसमें जो संस्था भर्ती करती थी लोगों को, रिक्रूट करती थी और एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी। एक तो व्यापम का था और दूसरे और भी जो एग्जाम होते हैं जैसे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में ने एक डिसीजन दिया है कि यहां जो एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2008 से 2012 के बीच में, तो उसमें कुछ लड़कों ने नकल की थी और इसके बाद पास हो गए थे, अब वो मेडिकल कर रहे हैं MBBS। तो ऐसे लगभग 630-635 लड़कों का जो एडमिशन है उन्होंने रद्द कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे नहीं मालूम कि नेशनल न्यूज़पेपर्स में इसको कितना स्थान मिला होगा। मतलब आप देखिए कि करप्शन के विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट जो इस तरह के बोल्ड स्टेप ले रही है, इसी से ही हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं कि मजबूरी में ही सही, लेकिन कम से कम जो करप्शन करने वाले लोग हैं वो शायद थमे। आप कल्पना करके देखिए 2008 से 12 के बीच में, मतलब अगर लास्ट ईयर हम 12 ले लें तो अब हम 17 में बात कर रहे हैं, तो 5 साल उन लड़कों को ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए हो गया। उसमें से कुछ तो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं जो 2008-09 में आए होंगे, कुछ डॉक्टर बन चुके होंगे, कुछ अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो उन सबको निरस्त कर दिया गया। और उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इसमें दो कुछ लोगों के हित के आधार पर जो है ना राष्ट्रीय हित की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। मतलब ये जो स्टूडेंट हैं ये कि साहब अब इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, इनका कैरियर खराब हो जाएगा, केवल इसके आधार पर ही किसी अवैध काम को वैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रहित इतना बड़ा है कि जिसमें निजी हितों की बलि दी जानी चाहिए। ये भी उन्होंने बकायदे अपने डिसीजन में कहा है। तो ये आपके एथिक्स के पेपर के लिए भी जो फोर्थ पेपर है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मित्रों आप वोटिंग का परसेंटेज देख रहे हैं, अभी जो स्टेट में वोटिंग हो रही है, जो गोवा में जो चुनाव हुए उसमें 83-84% वोटिंग हुई है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 82 नहीं, गोवा में या पांडिचेरी में जो चुनाव हुए थे, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं जल्दी जल्दी बोलने में, तो 83-84% शायद गोवा का ही था, तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो 63-65, और ये तो कॉमन है, इतना तो अब भारत में वोटिंग परसेंटेज हो ही गया है। लोकसभा के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो 70 से ऊपर पहुंच गए हैं। मैं वोटिंग परसेंटेज की बात इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता, लोकतंत्र में लोगों की जागरूकता का बढ़ना है, जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मित्रों बस इतनी ही खबरें हैं और अब मैं आता हूं, थोड़ी सी चर्चा करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, महान्यायवादी ये सब क्या हैं, किस तरीके के हैं, नाम में कहां कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड, जब हम भारत के महान्यायवादी कहते हैं तो इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी। आप यूं कह लीजिए कि ये सरकार के एक तरह से विधिक सलाहकार हैं और सरकार के जितने भी मामले होते हैं कोर्ट केस या वैधानिक, तो उसके बारे में वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि उनका नाम अक्सर सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार कोई केस में लड़ रही होती है तो उनका नाम आता है, वो सरकार के बिहाफ पर वहां अपीयर होते हैं। मित्रों यहां एक दो बातें आपको खासकर ध्यान में रखनी है जो प्री के लिए जरूरी है। पहला तो ये है कि जो भारत का जो महान न्यायवादी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, इज नॉट ए पॉलिटिशियन इवन, मतलब हम सलाहकार कहने पे लगता है ना जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ही इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो पॉलिटिशियन भी नहीं है, राइट हाँ वो संसद में बैठ सकते हैं, संसद में बोल सकते हैं, लेकिन वो संसद सदस्य नहीं है, और चूंकि वो संसद सदस्य नहीं है इसीलिए मतदान में भाग नहीं ले सकते। ये कुछ वे पॉइंट्स हैं जो जनरली प्री एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन और अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। मतलब ब्रिटेन में तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो कैबिनेट का मेंबर होता है, आप सोचिए कैबिनेट का मेंबर होता है, और अमेरिका का जो अटॉर्नी जनरल है उसको एक्सक्यूटिव पावर होते हैं, कार्यपालिका की शक्तियां उसके पास होती हैं। कार्यपालिका की शक्ति को आप इस रूप में समझ लीजिए कि भारत में किसके पास विधि संबंधी कार्यपालिका की शक्तियां हैं, हमारे विधि मंत्री को, कानून मंत्री जो होते हैं लॉ मिनिस्टर, उनके पास विधि संबंधी एक्सक्यूटिव पावर है। हमारे अटॉर्नी जनरल के पास विधि संबंधी कोई एक्सक्यूटिव पावर नहीं है। इसके बाद दूसरा नाम आता है फ्रेंड्स, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत सरकार के महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं खासकर उसी भ्रम से आपको बचाना चाह रहा हूं। जो सॉलिसिटर जनरल है वो ये मान करके चलिए कि जो अटॉर्नी जनरल है उसका सहयोग करने वाले हैं, उनको हेल्प करने वाले हैं, वो नेक्स्ट टू अटॉर्नी जनरल है, जूनियर टू अटॉर्नी जनरल है, राइट। इसके बाद फिर आप एक नाम सुनेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ये जो एडवोकेट जनरल हैं, यहां बहुत क्लियरली समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं, राज्य में होते हैं। इंग्लिश में उनका नाम एडवोकेट जनरल है, वो सॉलिसिटर जनरल नहीं है, लेकिन हिंदी में वो भी महाधिवक्ता कहलाते हैं, इसको आपको समझना होगा। इंग्लिश में अगर एडवोकेट जनरल लिखा हुआ है तो मान करके चलिए कि ये राज्य के महाधिवक्ता हैं, और अगर इंग्लिश में सॉलिसिटर जनरल लिखा हुआ है तो भारत सरकार के महाधिवक्ता हैं, और अगर सिर्फ महाधिवक्ता लिखा हुआ है तो फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये कहां के हैं। हां अगर क्लियर कट लिखा है कि भारत के महाधिवक्ता तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और राज्य के महाधिवक्ता तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हो गया। तो ये जो डेजिग्नेशन है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, और प्री में इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है कि देखें कि स्टूडेंट के दिमाग में तथ्य कितने स्पष्ट हैं, और अच्छी बात है, चीजें तो स्पष्ट होनी ही चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बातें आपसे की हैं। जहां तक न्यूज़पेपर्स का सवाल है, आज माफी चाहूंगा कि मैं ढेर सारी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन सारी क्लिपिंग्स बहुत अच्छी क्लिपिंग्स हैं, और इसमें जो हिंदू की क्लिपिंग्स है जो महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर के है, वो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, और मेरी कोशिश होगी कि उस आर्टिकल का हिंदी सार मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। तो दोस्तों अब न्यूज एनालिसिस में इतना ही, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अशोक मीना दिल्ली से, कुसुम सुथार तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, कविता पांडे सेजल राय खगड़िया बिहार से, बीजू नायक रूनी सिंह, ललित कुमार, सत्येंद्र कुमार, अरविंद यादव बलिया उत्तर प्रदेश से, जय कुमार प्रजापति भिंड मध्य प्रदेश से, अंकुश वैद्य रायपुर छत्तीसगढ़ से, विक्की वर्मा और इरफान सैफी सुल्तानपुर दोस्त उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।